सामाजिक नियंत्रण के साधन, विधियां अथवा अभिकरण। समाज एक जटिल व्यवस्था है। समाज में अलग अलग तरह के व्यक्ति, समिति एवं संस्थाएं होती हैं। सभी के हित, उद्देश्य एवं विचार आदि अलग अलग तरह के होते हैं। यही कारण है कि सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न साधन हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक नियंत्रण के साधन एक ना होकर अनेक साधन हैं। संभवतः इसलिए विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक नियंत्रण के साधनों को विभिन्न प्रकारों से वर्गीकृत किया है। ल्यूमले ने सामाजिक नियंत्रण के साधनों को दो भागों में वर्गीकृत किया है। इनमें पहले वर्ग में वे साधन आते हैं जो बल पर आधारित होते हैं, तथा दूसरे वर्ग में वे साधन आते हैं जो प्रतीकों पर आधारित होते हैं। इस प्रकार एक दूसरे विद्वान लूथर एवं बर्नार्ड ने सामाजिक नियंत्रण के साधनों को चेतन एवं अचेतन इन दोनों वर्गों में बांटा है, तथा इन दोनों के बीच विभेद भी किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी समाज में सामाजिक नियंत्रण के अनेक साधन होते हैं। किसी एक साधन के द्वारा सामाजिक नियंत्रण नहीं किया जा सकता। मानव के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक नियंत्रण के अनेक साधनों का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, औपचारिक तथा अनौपचारिक बहुत से साधन हैं। विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक नियंत्रण के साधनों में कुछ साधनों को विशेष महत्व दिया है। उदाहरण स्वरूप ईए रॉस ने परिवार, शिक्षा, विश्वास, धर्म, सामाजिक आदर्श, सामाजिक संकेत, संस्कार एवं उत्सव, कला, नेतृत्व, कानून तथा भौतिक शक्ति को सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन माना है। इस प्रकार गिडिंग्स ने विश्वास, सामाजिक संकेत, सामाजिक आदर्श, संस्कार, सामाजिक उत्सव, कला, नेतृत्व तथा बौद्धिक कारक आदि को सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन माना है। इस प्रकार यह पता चलता है कि सामाजिक नियंत्रण के अनेक साधन हैं और विभिन्न विद्वानों ने भी विभिन्न साधनों को महत्वपूर्ण बताया है। यह सामाजिक नियंत्रण के कुछ प्रमुख साधनों की चर्चा की जा रही है जो निम्नलिखित हैं। पहला परिवार, दूसरा शिक्षा, तीसरा धर्म, चौथा कानून, पांचवा जनमत, छठवां जनरीतियाँ, सातवां रूढ़ियाँ, आठवां प्रथाएँ, नौवां आचार, दसवां विश्वास, ग्यारहवां राज्य, बारहवां नेतागण, तेरहवां कला, चौदहवां प्रचार, पंद्रहवां हास्य व्यंग, सोलहवां पुरस्कार और दंड, अठारहवां अहिंसा। पहला परिवार। सामाजिक नियंत्रण का पहला साधन परिवार है। यह सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। व्यक्ति का जन्म परिवार में ही होता है। परिवार में ही उसका पालन पोषण होता है। व्यक्ति के जीवन की प्रथम पाठशाला परिवार ही है। परिवार में व्यक्ति का समाजीकरण होता है। जन्म के समय व्यक्ति एक जैविकीय प्राणी होता है। उसे एक जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाने का काम परिवार ही करता है। परिवार उसे अपने समाज के अनुकूल ढालता है। परिवार द्वारा ही व्यक्ति अपने समाज में प्रचलित आचार, व्यवहार, रीति रिवाज तथा आदर्श एवं मूल्य आदि से परिचित होता है। अगर यह कहा जाए कि परिवार ही आरंभिक रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति बात नहीं होगी। परिवार की भूमिका के संबंध में लुंडबर्ग ने लिखा है, सामाजिक व्यवस्था में यदि पुनरुत्पादन का कार्य रुक जाए, यदि बच्चों का पालन पोषण किया जाए और इन्हें अपने विचारों की अगली पीढ़ी के लिए संचरित करना तथा एक दूसरे से सहयोग करना ना सिखाया जाए, तब संभवतः समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वास्तविकता यह है कि परिवार एक प्राथमिक समूह के रूप में मानव के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, जो किसी अन्य संस्था के द्वारा संभव नहीं। परिवार एक ऐसी संस्था है जहां मानव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक आश्रय पाता है। इस संबंध में एंडरसन ने लिखा है, परिवार का एक रूप वह है जिसमें जन्म लेते हैं और दूसरा रूप वह है जिसमें हम बच्चों को जन्म देते हैं। परिवार की सार्वभौमिकता इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि इसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परिवार के इन दोनों रूपों में किसी एक का सदस्य ना हो। चार्ल्स कूले ने भी परिवार को एक ऐसा प्राथमिक समूह माना है जिसमें बच्चों के सामाजिक जीवन व आदर्श का निर्माण होता है। इस प्रकार यह पता चलता है कि मानव जीवन में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है और यह सामाजिक जीवन की एक प्रमुख संस्था है। परिवार विभिन्न रूपों में व्यक्तियों का सामाजिक नियंत्रण करता है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। परिवार व्यक्तियों का सामाजिकरण कर सामाजिक नियंत्रण करता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा मानव में मानवोचित एवं सामाजिक गुणों का विकास होता है। सामाजिकरण के द्वारा व्यक्तियों को समाज में रहने योग्य बनाया जाता है। उसे अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदर्शों एवं मूल्यों से परिचित कराया जाता है। यह सब कार्य सर्वप्रथम परिवार की ही संस्था करती है। परिवार व्यक्ति के आत्म का विकास कर उसमें आत्मनियंत्रण की भावना पैदा करता है। इस प्रकार व्यक्ति में समाजोचित गुणों का विकास होता है और वह सामाजिक आचरणों के अनुरूप अपना व्यवहार करता है, जिससे सामाजिक नियंत्रण होता है। बच्चा जब अच्छा आचरण या सामाजिक आचरण करता है तो परिवार द्वारा उसे प्रशंसा एवं पुरस्कार दिया जाता है, जिससे उसके मनोबल में वृद्धि होती है। साथ ही गलत आचरण या समाज विरोधी आचरण करने पर उसे परिवार द्वारा दंडित भी किया जाता है। इस प्रकार उसके व्यवहारों का नियंत्रण होता है, जो सामाजिक नियंत्रण में अहम भूमिका अदा करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि परिवार सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा सामाजिक नियंत्रण का कार्य करती है। परिवार अपने सदस्यों को विभिन्न परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करना भी सिखलाता है। मानव के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, उसे जीवन में विपरीत परिस्थितियों से भी सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में वह विचलित न हो जाए, इसलिए परिवार के वरिष्ठ सदस्य उसका मार्गदर्शन करते हैं और वह समाज विरोधी व्यवहारों से करने बच जाता है। इस प्रकार परिवार अपने सदस्यों को विभिन्न परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने की सीख देकर सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है। परिवार अपने सदस्यों को दायित्व के निर्वाह करने की शिक्षा देकर सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है। परिवार में व्यक्ति को विभिन्न पदों से संबंधित दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। इस दायित्व का निर्वाह वह सामाजिक नियमों के अधीन ही करता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि दायित्वों के निर्वाह के दौरान उसे सामाजिक नियंत्रण को स्वीकार करना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वाह करने में असफल होते हैं, उन्हें समाज में उपहास का पात्र बनना पड़ता है। अतः कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहता और इस प्रकार उसका सामाजिक नियंत्रण होता है। परिवार व्यक्ति को शिक्षा प्रदान कर भी सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है। परिवार को शिशु की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। व्यक्ति वहाँ नैतिकता का पाठ पढ़ता है। उसे अच्छा या बुरा में अंतर करना बताया जाता है। इन शिक्षाओं के द्वारा वह अपने सामाजिक आदर्शों और नियमों से परिचित होता है तथा अपने अधिकार एवं कर्तव्य का भी उसे बोध होता है। कहा भी गया है कि बच्चा नागरिकता का प्रथम पाठ अपनी माँ की गोद में पढ़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं के द्वारा व्यक्ति में इतना ज्ञान हो जाता है कि वह अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों पर चले और किसी भी प्रकार का समाज विरोधी व्यवहार ना करें। इस प्रकार व्यक्तियों का व्यवहार नियंत्रित होता है और सामाजिक नियंत्रण संभव हो पाता है। परिवार शिक्षा के महत्व को फीचर ने भी स्वीकार किया है और कहा है कि सामाजिक नियंत्रण में अहम भूमिका अदा करता है। इस संबंध में मूड़े ने लिखा है, शिक्षा देने वाली संस्था के रूप में उसकी कार्यकुशलता पर संपूर्ण समाज की सुरक्षा और अच्छी किस्म आधारित है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पारिवारिक शिक्षा प्रदान कर सामाजिक नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। परिवार आर्थिक ढांचे की धुरी भी है। परिवार को उत्पादन और उपभोग की इकाई भी कहा जाता है। परिवार में सदस्यों के बीच श्रम विभाजन पाया जाता है। परिवार विभिन्न प्रकारों से सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर व्यक्ति को किसी भी गलत व्यवहार करने से उसे बचाता है। आर्थिक कठिनाई के समय परिवार अपने सदस्यों की सहायता करता है। इस प्रकार आर्थिक रूप से व्यक्तियों को संरक्षण देकर उसका सामाजिक नियंत्रण करता है। परिवार के द्वारा बच्चों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुणों का विकास किया जाता है। परिवार में बच्चा प्रेम, दया, सहानुभूति, अनुकूलन, कार्यपालन, परोपकार एवं अनुशासन आदि का गुण सीखता है। इन गुणों के अभाव में समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना कठिन हो जाता है। इस प्रकार परिवार के द्वारा विभिन्न सामाजिक गुणों को प्राप्त कर एक व्यक्ति एक आदर्श नागरिक बनता है और अपने समाज एवं देश को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि परिवार विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास कर सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखने में सिद्ध होता है। परिवार अपने सदस्यों की सुरक्षा एवं देखरेख करता है। व्यक्ति के जीवन में विभिन्न आवश्यकताओं की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार व्यक्तियों के समाज विरोधी व्यवहारों पर अंकुश लगता है। इस प्रकार परिवार अपने सदस्यों की देखरेख तथा सुरक्षा प्रदान करके उन्हें गलत दिशा में जाने से रोकता है और उनका सामाजिक नियंत्रण करता है। शिक्षा सामाजिक नियंत्रण का दूसरा साधन शिक्षा है। यह सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा ज्ञान के भंडार या सामाजिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी प्रथाओं, परंपराओं तथा रीति रिवाजों से परिचित होता है। यह व्यक्तियों की कुशलता को बढ़ाकर उसे आर्थिक क्षेत्र में भी प्रगति दिलाता है। शिक्षा मानव के प्रति धुरी है। शिक्षा मानव के जीवन की आधारशिला है। शिक्षा का तात्पर्य केवल पुस्तकीय ज्ञान से ही नहीं होता बल्कि सामाजिक एवं व्यवहारिक ज्ञान से भी होता है। शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए फिलिपस ने कहा, शिक्षा वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह है। इसका मतलब शिक्षा के द्वारा अतीत के अनुभवों को जाना जा सकता है, वर्तमान को समझा जा सकता है तथा भावी परिस्थितियों के लिए तर्क बुद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी ने भी शिक्षा के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य में जो कुछ भी सिस्टम है उनका संपूर्ण विकास करना है। अर्थात शरीर, बुद्धि तथा आत्मा तीनों का संपूर्ण विकास। इन विचारों से पता चलता है कि मानव का संपूर्ण शिक्षा विकास से ही संभव है। अगर मानव के शरीर में वृद्धि, बुद्धि तथा आत्मा का संपूर्ण विकास हो जाए तो फिर शेष क्या रह जाता है। शिक्षा व्यक्ति को सत्य असत्य उचित अनुचित में भेद करना सिखाता है। भारतवर्ष में शिक्षा का स्वरूप समय समय पर बदलता रहता है। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था और आज की शिक्षा व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन शिक्षा का मूल उद्देश्य हमेशा एक ही रहा है, व्यक्तियों की बौद्धिक चारित्रिक एवं अन्य प्रकार का विकास करना शिक्षा का हमेशा उद्देश्य रहा है। शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास कर उसे पूर्ण संपूर्णतः प्रदान करना है। इस संबंध में दुर्खीम ने लिखा है, शिक्षा एक नैतिक दबाव है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौशल और स्वीकृति मनोवृत्तियों का हस्तांतरण करती है, जिससे सांस्कृतिक निसरता बनी रहती है। शिक्षा का स्वरूप भी भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न रूपों में देखने को मिलता है। परंपरागत समाजों में शिक्षा का रूप अलग होता है, जबकि आधुनिक जटिल समाजों में अलग होता है। आज विद्यालयों महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के माध्यम से जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसकी प्रकृति व्यवसायिक कही जा सकती है। शिक्षा के संबंध में टीवी बोटोमोर ने कहा है, शिक्षा आवश्यक रूप में नई पीढ़ियों का समाजीकरण करने का कार्य करती है, लेकिन सामाजिक समूहों और संस्थाओं के अनुसार यह स्वयं विविध रूपों में स्पष्ट होती है। इस प्रकार यह पता चलता है कि शिक्षा विभिन्न रूपों में व्यक्तियों के ज्ञान में वृद्धि करती है। शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीयता तथा अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है तथा लोगों के एक दूसरे को समझने में सहायता मिलती है। यह कहा जा सकता है कि शिक्षा के बिना सामाजिक जीवन में संवयन तथा व्यवस्था संभव नहीं। प्रोफेसर वार्ड ने भी पुस्तक डायनामिक सोशियोलॉजी में शिक्षा का कार्य ज्ञान की वृद्धि माना है। मुनरो ने शिक्षा का कार्य ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ सामाजिक नियंत्रण संस्कृति तथा सभ्यता तथा प्रसार का सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहन देना माना है। यह विचार उन्होंने ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में व्यक्त किया है। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा मानव समाज के संगठन का आधार है। इस संबंध में रसिक ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है, शिक्षा लोगों को शिष्ट बनाने में है जो उन्हें होना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने विचारों से पता चलता है कि शिक्षा मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और यह मानव का चहुमुखी विकास करती है। शिक्षा विभिन्न रूपों में सामाजिक नियंत्रण का भी काम करती है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। शिक्षा व्यक्तियों का समाजीकरण कर सामाजिक नियंत्रण करती है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपने समाज के आदर्शों मूल्यों विचारों एवं अन्य बातों से अवगत होता है। विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास शिक्षा के द्वारा ही होता है। परिवार भी विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं के द्वारा ही व्यक्ति का समाजीकरण करता है। शिक्षा किसी समाज के सदस्यों के व्यवहारों में एक रूपता लाने का सहायता करती है। अगर समाज के सदस्यों के व्यवहारों में एक रूपता होगी तो समाज के सामाजिक नियंत्रण कायम होगा। इस प्रकार यह पता चलता है कि शिक्षा व्यक्तियों का समाजीकरण कर उन्हें सामाजिक नियंत्रण का कार्य करती है। शिक्षा व्यक्तियों का बौद्धिक विकास कर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करती है। चूंकि शिक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लेकर चलती है, इसलिए इसमें अनुभव तर्क और यथार्थ का समावेश होता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति को उचित एवं अनुचित का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। शिक्षित व्यक्ति तथा समाज का व्यवहार कम उद्वेगपूर्ण कम हिंसक एवं संतुलित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षित व्यक्ति व्यवहार तथा समाज आत्मनियंत्रित होता है। इस आत्मनियंत्रण के कारण वह कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता चाहता जिससे समाज में कोई गलत संदेश जाए। इस प्रकार शिक्षा के द्वारा सामाजिक नियंत्रण होता है। शिक्षा के द्वारा संस्कृति का संचरण होता है। इस संचरण के कारण एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता रहता है। अगर सांस्कृतिक ज्ञान का हस्तांतरण न एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं किया जाएगा तो व्यक्ति अपनी संस्कृति के अमूल्य धरोहर के ज्ञान से वंचित हो जाएंगे, जो उसे स्वयं अपने व्यवहार के नियम बनाने पड़ेंगे। फलतः समाज में संघर्षपूर्ण स्थिति पैदा हो जाएगी। शिक्षा के द्वारा संस्कृति का संचरण होने से लोग अपनी संस्कृति के अनुकूल आचरण करते हैं और उनका सामाजिक नियंत्रण होता है। शिक्षा व्यक्तियों में नैतिक गुणों का विकास कर भी सामाजिक नियंत्रण का कार्य करती है। नैतिक गुणों के अंतर्गत प्रेम, सहिष्णुता, दया, धर्म, अनुशासन एवं त्याग आदि की भावना का विकास होता है। ये सभी गुण मानव को अपने कर्तव्यों को बोध कराते हैं तथा सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने में मदद करते हैं। मनुष्य एक लालची प्राणी है, उसमें स्वार्थ की भावना भी पाई जाती है। अगर उसमें नैतिक गुण नहीं हो तो वह बुराइयों की ओर अग्रसर होता जाता है, जिससे समाज एवं सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण को भी खतरा पैदा हो जाता है। शिक्षा नैतिक गुणों का विकास कर सामाजिक नियंत्रण को कायम रखने में प्रभावशाली भूमिका अदा करती है। शिक्षा के द्वारा व्यवस्थित स्तरीकरण तथा अनुकूलन की क्षमता का विकास कर भी सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। शिक्षा का एक कार्य व्यक्ति और समाज में अनुकूलन स्थापित करना है। अगर समाज में व्यक्ति और समाज में अनुकूलन स्थापित रहेगा तो सामाजिक व्यवस्था उन्नत एवं सुदृढ़ होगी। अगर सामाजिक व्यवस्था उन्नत एवं सुदृढ़ होगी तो समाज नियंत्रण भी कायम रहेगा। इस प्रकार शिक्षा के द्वारा अनुकूलन की क्षमता में विकास कर सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। शिक्षा के द्वारा व्यवस्थित स्तरीकरण के माध्यम से भी सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। विभिन्न समाजों में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। इस सामाजिक स्तरीकरण के कारण समाज में व्यक्तियों को अलग अलग स्थिति, परंपराओं तथा प्रथाओं के अनुरूप प्राप्त होती है। इससे समाज में संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं होती। शिक्षा स्तरीकरण के व्यवस्था के अंदर व्यक्तियों की स्थिति और अधिकारों का निर्धारण करती है। शिक्षा द्वारा समाज में व्यक्तियों को प्राप्त स्थिति अर्जित होती है। इसके कारण व्यक्ति अपनी योग्यता में सुधार कर सामाजिक जीवन को नियंत्रित एवं सुव्यवस्थित कर सकती है। शिक्षा समाज में संतुलन कायम करने का कार्य कर सामाजिक नियंत्रण करती है। प्रत्येक समाज एवं सामाजिक व्यवस्था में नए एवं पुराने विचारों के बीच संघर्ष चलता है। पुरानी शक्तियां परंपरागत आदर्शों को बदलने के विरुद्ध रहती हैं, जबकि नई पीढ़ियां इन आदर्शों को बदलकर नए आदर्शों को लाने की पक्षधर होती हैं। इस स्थिति में संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता होती है, जो शिक्षा करती है। शिक्षा अंधविश्वासों एवं गलत रूढ़ियों का बहिष्कार करने की प्रेरणा देती है तथा परंपरागत लोकाचारों के अच्छे पक्ष को बनाए रखने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार यह समाज में एक ऐसा संतुलन कायम करती है जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अतीत के लिए उपयोगी मूल्यों की अवहेलना न करता हो। समाज में इस प्रकार का संतुलन सामाजिक नियंत्रण के लिए आवश्यक है। इस प्रकार शिक्षा के द्वारा सामाजिक नियंत्रण होता है। शिक्षा व्यक्तियों को आर्थिक संरक्षण प्रदान कर भी सामाजिक नियंत्रण करती है। जब व्यक्ति अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो वह सामाजिक नियंत्रण में भी सही बैठ नहीं पाता। शिक्षा रोजगार के नए नए साधन प्रदान कर व्यक्तियों को आर्थिक संरक्षण प्रदान करती है, जिससे ये समाज विरोधी व्यवहारों की ओर प्रेरित न होते हुए शिक्षा को आर्थिक जीवन में भी समा सकें। इस संबंध में वैलेंटाइन ने भी कहा है, शिक्षा सामाजिक नियंत्रण का एक ऐसा प्रकार है जो एक संगठित आदर्शवादी कार्यक्रम प्रस्तुत कर समाज को संगठित बनाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों को सामाजिक संरक्षण प्रदान कर सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। धर्म। सामाजिक नियंत्रण का तीसरा साधन धर्म है। धर्म का भी सामाजिक नियंत्रणों के साधनों में महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि आज के वैज्ञानिक युग में धर्म के महत्व को लोग उतना स्वीकार नहीं करते, फिर भी धर्म के द्वारा ही सामाजिक नियंत्रण होता है। धर्म के संबंध में किंग्सले डेविस का कथन है, धर्म मानव समाज का एक ऐसा सर्वव्यापी स्थायी और शाश्वत तत्व है जिसे समझे बिना समाज के रूप को बिल्कुल नहीं समझा जा सकता। धर्म अपने आप में जटिल है, इसकी व्याख्या करना सरल नहीं है। धर्म समाज को एक नए सूत्र में बांधने का कार्य करता है। यह मानव जीवन के अनेक पक्षों एवं आयामों को प्रभावित करता है, इसलिए धर्म सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। सामाजिक नियंत्रण में धर्म के महत्व की चर्चा करने से पहले कुछ विद्वानों द्वारा प्रस्तुत धर्म की अवधारणा से संबंधित विचारों का अवलोकन करना आवश्यक प्रतीत होता है। जेम्स फ्रेजर ने द गोल्डन बॉम में लिखा है, धर्म से तात्पर्य मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि एवं आराधना से है जिसके बारे में व्यक्तियों की यह विश्वास हो कि वे प्राकृतिक और मानव जीवन को नियंत्रित करती है, अर्थात उनको निर्देश देती है। इस प्रकार इस्माइल दुर्खिन ने भी धर्म के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित अनेक विश्वासों और व्यवहारों को एक ऐसी संगठित व्यवस्था है जो उन व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय की भावना में बांधती है जो उसी प्रकार के विश्वासों और व्यवहारों को अभिव्यक्त करते हैं। यह विचार उन्होंने द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में व्यक्त किया है। एक दूसरे समाजशास्त्री एच एम जॉनसन ने धर्म के संबंध में कहा है, धर्म क्रम या अधिक मात्रा में अधिक प्राकृतिक तत्वों शक्तियों और स्थानों का एवं आत्माओं के संबंधित विश्वासों के आचरणों से संगठित व्यवस्था है। विभिन्न विद्वानों द्वारा धर्म से संबंधित विचारों का अवलोकन करने से पता चलता है कि प्रत्येक धर्म में कुछ व्यवहार प्रतिमान भी होते हैं। इस धर्म में पवित्रता तथा अपवित्रता की भावना रहती है। जब धर्म सामाजिकरण के साधन के रूप में किस प्रकार कार्य करता है उसका विवरण नीचे दिया जा रहा है जो निम्नलिखित है। धर्म मानव के समक्ष एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करता है जिसका पालन करना मानव जीवन का लक्ष्य बन जाता है। धर्म उचित एवं अनुचित में अंतर करके भी मानव को उचित व्यवहार करने की प्रेरणा देता है तथा अनुचित व्यवहार से दूर रहने की भी प्रेरणा देता है। धर्म व्यक्ति को अनेक रूपों में संपन्न करता है। इस संबंध में एच एम जॉनसन का कथन है कि धर्म एक मात्र संस्था ऐसी है जो व्यक्ति के सामने नैतिक मूल्यों के महत्व को स्पष्ट करती है और व्यक्ति को यह बतलाती है कि दूसरे लोग उससे कैसे व्यवहारों की आशा करते हैं। इस तरह नैतिकता का उसे आत्मनियंत्रण का बोध होता है। इस प्रकार आत्मनियंत्रण का बोध होने से व्यक्तियों का सामाजिक नियंत्रण भी होता है। धर्म व्यक्ति में पाप और पुण्य की भावना विकसित कर व्यक्तियों में यह प्रेरणा भरता है कि धर्म के अनुसार आचरण करने से उसे पुण्य होगा और धर्म के विरुद्ध आचरण करने से उसे पाप होगा। इसलिए व्यक्ति धार्मिक आचरणों का उल्लंघन नहीं कर पाते और उनके व्यवहारों का नियंत्रण होता है। धर्म पुनर्जन्म की अवधारणा प्रस्तुत कर भी सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है। धार्मिक विश्वासों के अनुसार यह माना जाता है कि इस जन्म में अच्छा कर्म करने पर दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा और इस जन्म में बुरा कर्म करने पर अगले जन्म में बुरा फल मिलेगा। इस विश्वास एवं भ्रम के कारण व्यक्ति बुरे कार्यों की ओर प्रेरित नहीं होता और इस प्रकार उसके व्यवहारों का नियंत्रण होता है जो सामाजिक नियंत्रण में सहायक होता है। धर्म के द्वारा मानव एवं ईश्वर के संबंध के अलावा मानव एवं मानव के संबंध के बारे में भी नियम आधारित किए जाते हैं। इसके कारण व्यक्तियों के आपसी संबंध और विभिन्न कार्य बहुत हद तक नियंत्रित एवं निर्देशित होते हैं। धार्मिक नियमों का पालन कर व्यक्तियों में यह संतोष होता है कि इसका फल उन्हें तथा उनके बच्चों को अच्छा मिलेगा। फलतः वे धार्मिक नियमों के अनुरूप व्यवहार करते हैं और उनका नियंत्रण होता है। धर्म निराश व्यक्तियों के लिए रामबाण का कार्य करता है। यदि धर्म ना हो तो निराश व्यक्ति सामाजिक नियमों की अवहेलना करेंगे, लेकिन धर्म के कारण वे ऐसा नहीं करते। धर्म उनमें नैतिकता की भावना तथा आत्मनियंत्रण पैदा करता है। इस प्रकार वे गलत कार्यों को करने से बच जाते हैं। धर्म ने व्यक्तिगत विघटन एवं पारिवारिक विघटन को बहुत हद तक रोका है। इस प्रकार धर्म के द्वारा आत्मनियंत्रित होकर एक निराशावादी व्यक्ति भी अपने आप को सामाजिक विचारधारा से जोड़े रखता है और इस प्रकार उसका नियंत्रण होता है। धर्म सामाजिक जीवन में तनाव को रोककर सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। धर्म ऐसा तरीका विकसित करता है जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ के बदले सामूहिक स्वार्थ का महत्व हो। जब सामूहिक स्वार्थ की प्रधानता होगी तो सामाजिक एकीकरण की शक्तियों का सहारा मिलता है। इस संबंध में H.M. जॉनसन ने लिखा है, धर्म एकीकरण का कोई एकमात्र शक्ति नहीं वरन अनेक साधनों में से एक है जो एकीकरण की प्रक्रिया में योगदान करता है। धर्म सामाजिक परिवर्तन पर भी समुचित नियंत्रण लगाकर समाज में स्थायित्व लाता है। यह ऐसे परिवर्तनों का विरोध करता है जो समाज में विघटन की स्थिति पैदा करते हैं। जो परिवर्तन समाज के लिए स्वस्थ एवं लाभदायक हों, धर्म उनका स्वागत करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि धर्म सामाजिक नियंत्रण करता है, साथ ही धर्म लोगों के लिए स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध कराकर लोगों में भावनात्मक एकता पैदा करता है। यह भावनात्मक एकता लोगों की सामूहिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। इस प्रकार धर्म सामाजिक नियंत्रण को प्रोत्साहन देता है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह सरल और जटिल प्राथमिक एवं द्वितीयक समाजों में सामाजिक नियंत्रण का एक प्रभावशाली साधन है। यह धर्म ही है जिसके कारण समाज एवं सामाजिक अवस्था बहुत हद तक टिकी हुई है। नहीं तो आज के भौतिकवादी युग में मानव के गलत व्यवहारों पर अंकुश लगाना संभव नहीं हो पाता। अतः यह पता चलता है कि धर्म एक सामाजिक नियंत्रण का मुख्य साधन है। कानून। कानून सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्राचीन समाज का रूप सरल था, इसलिए प्रथा, परंपरा आदि के द्वारा सामाजिक नियंत्रण का काम सरलतापूर्वक हो जाता था। लेकिन ज्यों ज्यों समाज का दायरा बढ़ता गया तथा जटिल होता गया, त्यों त्यों व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण रखने के लिए कानून की आवश्यकता हुई। आज के युग में कानून सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है। राज्य समाज के व्यक्तियों के व्यवहारों का नियंत्रण करने के लिए कानून बनाता है तथा उसे लागू करता है। कानून का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को दंडित किया जाता है। कानून को पुलिस और न्यायालयों के माध्यम से आकार एवं क्रियान्वित किया जाता है। E.S. रॉस ने कानून को सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन माना है। उन्होंने लिखा है, कानून द्वारा समाज में प्रयुक्त सामाजिक नियंत्रण का सबसे विशिष्ट एवं पूर्ण साधन है। रॉस ने कहा है कि कानून के द्वारा समाज का कल्याण होता है। कानून के संबंध में मैकैबर तथा पेज ने लिखा है, कानून नियमों का वह संग्रह है जिसको राज्य के न्यायालयों द्वारा माना जाता है, जिसकी व्याख्या की जाती है और विशिष्ट परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। कानून के दो उद्देश्यों की चर्चा मैकैबर एंड पेज ने की है। इसका पहला उद्देश्य यह है कि मनुष्य को सामान्य अवसरों पर सुरक्षा प्रदान करने वाली मौलिक अवस्था को बनाए रखना, तथा दूसरा उद्देश्य एक दूसरे के हितों पर आक्रमण करने और व्यक्तियों के परस्पर संघर्षों को रोकना है। कानून के बारे में मैकैबर ने लिखा है, कानून राज्य द्वारा समर्थित संहिता है जो सब पर समान रूप से लागू होने के कारण इस प्रकार वह समाज का संरक्षक है। आज के समय में कानून सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है। यह निश्चित एवं स्पष्ट नियमों के द्वारा व्यक्तियों के सभी व्यवहारों पर नियंत्रण लगाता है। सामाजिक जीवन में कानून का महत्व इतना अधिक है कि व्यक्ति समाजशास्त्र में कानून का समाजशास्त्र नाम एक पृथक शाखा ही बन गई है। इस प्रकार यह पता चलता है कि कानून सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन है। कानून किस प्रकार सामाजिक नियंत्रण में सहायक सिद्ध होता है, इसका विवरण नीचे दिया जा रहा है। कानून व्यक्ति और समूह के व्यवहारों पर नियंत्रण रखकर सामाजिक नियंत्रण करता है। समाज की व्यवस्था ही ऐसी है कि खासकर आधुनिक समाज की यहाँ सबल लोग निर्बलों का शोषण करते हैं। परंपरागत प्रथा रूढ़ी आदि इस पर नियंत्रण नहीं रख पाते। इस स्थिति में कानून ही व्यवस्थित प्रयोग द्वारा सभी व्यक्तियों के व्यवहारों में समायोजन स्थापित करती है। कानून के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और अगर वे इनकी अवहेलना करते हैं तो उन्हें कुछ अन्य कानूनों द्वारा दंड भी दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति और समूहों का व्यवहार नियंत्रित रहता है और इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण भी होता है। कानून प्रथाओं की रक्षा करके भी सामाजिक नियंत्रण करता है। कानून के द्वारा वे कार्य किए जाते हैं जो प्रथाओं द्वारा किए जाते हैं। यह कहा जा सकता है कि कानून की नियंत्रण शक्ति का बना रहना इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि उसमें मुख्य प्रथाओं का समावेश होता है। इस संबंध में वेस्टर्न मार्क का कहना है कि कानूनों का पालन प्राय इसलिए अधिक होता है कि वे एक प्रकार की प्रथाएं होती हैं, ना कि इसलिए कि वे कानून होते हैं। यदि समाज में किसी कानून को प्रथा के विरुद्ध समझा जाता है तो व्यवहारिक रूप से उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इस प्रकार कानून द्वारा सामाजिक नियंत्रण होता है। कानून मध्यस्थता का कार्य करके भी सामाजिक नियंत्रण करता है। समाज में बहुत सारे नियम बने हुए हैं, लेकिन कभी भी ऐसा भी होता है कि विभिन्न नियमों के बावजूद दो पक्षों में किसी विवाद को सुलझाना कठिन हो जाता है। इस स्थिति में कानून समाज द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर इन विवादों को सुलझाता है। इससे सभी व्यक्तियों को संरक्षण मिलता है तथा उनके व्यक्तित्व का विकास भी होता है। इस प्रकार कानून मध्यस्थता का कार्य कर सामाजिक नियंत्रण करता है। कानून वैधानिक चेतना उत्पन्न कर सामाजिक नियंत्रण करता है। कानून किसी विशेष हित की पूर्ति के लिए निर्मित नहीं होता, बल्कि यह सार्वजनिक हितों की पूर्ति के लिए निर्मित होता है। कानून व्यक्तियों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन के प्रति चेतना उत्पन्न करता है। वर्तमान युग में इसी चेतना के द्वारा व्यक्ति का समाजीकरण होता है। कानून व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति भी सजग बनाता है। कानून के ऐतिहासिक संप्रदाय का महत्व इस बात से भी पता चलता है कि कानून किसी विधान निर्माता के विचार की उपज नहीं, बल्कि कानून समुदाय की उस प्रतिभा की उपज है जिसे समुदाय के सभी सदस्य पारस्परिक विचार विमर्श के दौरान अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार यह पता चलता है कि कानून वैधानिक चेतना उत्पन्न कर सामाजिक नियंत्रण करता है, साथ ही सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने का भी कार्य करता है। कानून सामाजिक परिवर्तन का रूप निर्धारित कर सामाजिक नियंत्रण करता है। आज सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है। इसका नतीजा यह होता है कि बहुत से व्यक्ति बदली हुई परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते और इस कारण बहुत सी सामाजिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कानून अनियंत्रित और व्यर्थ के परिवर्तन को रोककर समाज में व्यवस्थित रखना चाहता है, जिससे समाज के लक्ष्यों और साधनों के बीच संतुलन बना रहे। जिन समाजों में कानून अधिक प्रभावी है, वहाँ अनियोजित रूप से परिवर्तन नहीं हो पाता, फलतः सामाजिक संगठन एवं व्यवस्था सुदृढ़ होती जाती है और सामाजिक जीवन भी संगठित होता है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन का रूप निर्धारण कर सामाजिक नियंत्रण करता है। उपयुक्त विवरणों से पता चलता है कि सामाजिक नियंत्रण को एक ऐसा प्रभावशाली साधन है जो व्यक्तियों के व्यवहारों को समाज को व्यवस्थित करता है और समाज में सामाजिक नियंत्रण कायम रहता है। जनमत। जनमत सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है। जनमत का तात्पर्य किसी समस्या विशेष के बारे में जनता द्वारा मानी जाने वाली राय है। यह एक ऐसा निर्णय है जिसे जनता स्वयं निर्मित करती है और स्वयं उसे स्वीकार भी करती है। प्रशासनिक समाजों में जहाँ की जीवन शैली मुख्यतः परंपराओं और प्रथाओं पर निर्भर करती है, वह जनमत एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति की क्रियाओं और व्यवहारों को सही दिशा में नियंत्रित करती है। प्रशंसा और निंदा जनमत के दो प्रमुख अस्त्र हैं जिनके द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण किया जाता है। इसका महत्व सरल में अधिक होता है। जनमत में एक ऐसा विचार कहा जा सकता है जो एक निश्चित समय पर किसी विषय के संदर्भ में जनता के द्वारा व्यक्त किया गया हो। सामाजिक नियंत्रण में जनमत का महत्व बहुत अधिक है। जनमत किस प्रकार सामाजिक नियंत्रण करता है, इसका विवरण नीचे निम्नलिखित दिया गया है। जनमत केवल व्यक्तिगत व्यवहारों पर नियंत्रण नहीं करता, बल्कि यह बड़े बड़े समूहों को भी अधिनायकवादी प्रवृत्ति से बचाता है। इस संबंध में गिंसबर्ग का कहना है, जनता की स्वीकृति और अस्वीकृति एक जबरदस्त ताकत है। यह हमेशा बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होती, लेकिन फिर भी जिन लोगों का समाज पर अधिक प्रभाव होता है, उनके इरादों पर लगाम लगाए रखती है। इस दृष्टि से जनमत का महत्व किसी नई बात को पैदा करने से नहीं होता, बल्कि उसकी नियंत्रण शक्ति से है। जनमत में न केवल व्यक्तियों को प्रभावित करता है, बल्कि बहुत हद तक राजकीय नीति, सरकार और प्रशासन को भी प्रभावित करता है। इसलिए टीबी मोटोमोर ने लिखा है, जनमत चाहे धर्म से प्रभावित हो अथवा नैतिकता या प्रथा से, सामाजिक आदान प्रदान का नियम वास्तव में जनमत के द्वारा ही होता है। इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने में जनमत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्राथमिक समाजों में निंदा या उपहास द्वारा नियंत्रण किया जाता है। कोई भी व्यक्ति समाज में उपहास का पात्र बनना नहीं चाहता, इसलिए खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोगों का जो मत होता है उसे सही व्यक्ति स्वीकार करते हैं। जनमत समाज कल्याण के लिए होता है, ऐसा सोचकर जल्द कोई इसका उल्लंघन नहीं करना चाहता। जनमत का उल्लंघन करने पर उस व्यक्ति को समाज विरोधी समझा जाता है तथा समाज से बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। इस प्रकार प्राथमिक समाजों में व्यक्तियों का व्यवहार जनमत द्वारा नियंत्रित होता है। प्राथमिक समाजों के साथ साथ द्वितीयक समाजों में भी जनमत सामाजिक नियंत्रण या प्रमुख साधन बन गया है। इन समाजों में प्रथा, परंपरा तथा धर्म आदि उतना नियंत्रण नहीं कर पाता जितना नियंत्रण जनमत कर पाता है। द्वितीयक समूह समाजों में संबंधों की स्थापना किसी विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति जो मत व्यक्त करता है उसे दूसरा व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। चुनाव के समय भी जनमत का महत्व अधिक हो जाता है। इस प्रकार पता चलता है कि केवल प्राथमिक समाजों में बल्कि द्वितीयक समाजों में भी जनमत सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है। जनमत पर सरकार का नियंत्रण सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। सभी समाजों में शासन का कार्य जनमत के आधार पर ही किया जाता है। यदि शासन चलाने में जनमत की अवहेलना कर दी जाए तो असंतुष्ट व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा समूह समाज में बनता चला जाएगा, जिस कारण शासन का कार्य चलाना कठिन हो जाएगा। इस संबंध में गिंसबर्ग का कहना है कि सरकार के लिए जनमत का महत्व इस कारण बहुत अधिक है कि जनमत एक बहुत बड़े आकार का जीवित तथ्य होता है और इसकी उपेक्षा करने से निश्चय ही एक बड़ी दुर्घटना होने का भय रहता है। इस प्रकार यह पता चलता है कि जनमत द्वारा बहुत हद तक शासन पर नियंत्रण रहता है और इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण हो पाता है। उपयुक्त विवरणों से पता चलता है कि जनमत प्राथमिक समाजों, द्वितीयक समाजों तथा शासन आदि पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जनमत सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है, जो विभिन्न रूपों से व्यक्तियों तथा समाज के व्यवहारों को नियंत्रित करता है। जनरीतियाँ सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। जनरीतियों का निर्माण जानबूझकर नहीं किया जाता, बल्कि जब कोई व्यवहार करना आवश्यक हो जाता है और समाज में अधिकांश लोग उस व्यवहार को करने लगते हैं, तब जनरीति का निर्माण हो जाता है। ग्रीन का कहना है कि जनरीतियाँ करने की वे रीतियाँ हैं जो समाज का समूह या समूह में सामान्य होती हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रहती है। प्रत्येक समाज की अपनी अपनी जनरीतियाँ होती हैं, जैसे उठने बैठने, खाने पीने, कपड़ा पहनने तथा अभिवादन करने आदि का ढंग भी सभी समाजों में जनरीतियों द्वारा निर्धारित होती है। प्रत्येक समाज में जनरीतियाँ अलग अलग होती है। जनरीतियों का उद्देश्य सदस्यों के व्यवहारों में समानता, समरूपता लाकर सामाजिक संरचना को स्थिरता प्रदान करना होता है। यदि समाज में व्यक्तियों को यूं ही अपना व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो समाज में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए समाज मानव के व्यवहारों पर नियंत्रण रखने के लिए समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों अथवा जनरीतियों के अनुसार व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य भी जनरीतियों का उल्लंघन नहीं कर पाता, क्योंकि इसका पालन करना उसकी आदत बन चुकी है तथा इसका उल्लंघन करने पर उसे समाज के उपहास का पात्र बनने का भी भय रहता है। अधिकांशतः जनरीतियाँ व्यक्तियों की आदत बन चुकी होती है, इसलिए इसका पालन करने में व्यक्ति को कोई कठिनाई नहीं होती। इस प्रकार यह पता चलता है कि जनरीतियाँ समाज के लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार है, जो लोगों के आदत में शामिल हो चुकी है। जनरीतियों द्वारा एक प्रकार का व्यवहार समाज के प्रत्येक सदस्य करते हैं, जिससे सामाजिक समरूपता तथा सामाजिक एकता बनी रहती है। यह सामाजिक एकता समाज को व्यवस्थित करने में मददगार सिद्ध होती है। जब समाज में सामाजिक एकता और सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी तो उस समाज के सदस्यों का व्यवहार भी नियंत्रित होगा। इस प्रकार जनरीति के द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों का नियंत्रण कर सामाजिक नियंत्रण किया जा सकता है। रूढ़ियाँ भी सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब जनरीतियों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है तो उसे रूढ़ियाँ कहा जाता है। जनरीतियों की तुलना में रूढ़ियाँ अधिक कठोर होती हैं और इसका पालन व्यक्ति को अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप कपड़ा बनाना जनरीति है। व्यक्ति किस प्रकार का कपड़ा पहने गए यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन कोई व्यक्ति बिना कपड़ा पहने सड़क पर नंगा नहीं घूम सकता, यह रूढ़ी है। इस प्रकार यह पता चलता है कि रूढ़ी का संबंध समाज में सब व्यक्तियों के अनिवार्य व्यवहारों से होता है। चूँकि इसका संबंध समाज में व्यक्तियों के सामाजिक अनिवार्य व्यवहारों से होता है, इसलिए इसका उल्लंघन करने पर समाज द्वारा दंड का प्रावधान होता है। इसलिए कोई भी समाज व्यक्तियों की रूढ़ियों का उल्लंघन करने में हिम्मत नहीं कर पाता। इस प्रकार व्यक्तियों के व्यवहारों का नियंत्रण होता है, साथ ही सामाजिक नियंत्रण भी होता है। मैकैबर तथा पेज ने कहा है कि रूढ़ी में लोकहित की भावना छिपी रहती है। चूँकि इसमें लोकहित की भावना छिपी रहती है, इसलिए भी लोग इसका पालन करते हैं। इस प्रकार व्यक्तियों के व्यवहारों के नियंत्रण के साथ साथ सामाजिक नियंत्रण भी होता है। प्रथाएं सामाजिक नियंत्रण के साधनों में प्रथाओं का महत्वपूर्ण साधन है। प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ प्रथाओं का प्रचलन रहता है जो उस समाज के हित में होता है। प्रथाओं के संबंध में बोगार्ट्स ने कहा है कि ये नियंत्रण की समूह सम्मत प्रविधियां हैं जो अच्छी तरह जमी और मान्य होती हैं। मैकैबर तथा पेज ने कहा है कि रूढ़ी में लोकहित की भावना छिपी रहती है। क्योंकि इसमें लोकहित की भावना छिपी रहती है, इसलिए भी लोग इसका पालन करते हैं। इस प्रकार व्यक्तियों के व्यवहारों के नियंत्रण के साथ साथ सामाजिक नियंत्रण भी होता है। प्रथाएं सामाजिक नियंत्रण के साधनों में प्रथाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक समाज में कुछ ना कुछ प्रथाओं का प्रचलन रहता है जो उस समाज के हित में होता है। प्रथाओं के संबंध में बोगार्ट्स ने कहा है कि ये नियंत्रण की समूह सम्मत प्रविधियां हैं जो अच्छी तरह जमी और मान्य होती हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती हैं। इस प्रकार प्रथाओं के संबंध में मैकैबर तथा पेज ने लिखा है, प्रथा एक सामूहिक कार्यविधि है जो बिना प्रत्यक्ष अधिनियम के, बिना किसी संगठित सत्ता के द्वारा घोषणा किए हुए, लागू किए हुए अथवा रक्षा किए हुए कर्मस उदित हुई है। प्रथा सामान्य संस्कृति द्वारा सुरक्षित रखी जाती है। समाज में व्यक्ति के व्यवहारों के नियंत्रण में प्रथाओं का बहुत अधिक महत्व है। आमतौर पर लोग स्वयं प्रथाओं के अनुसार चलना चाहते हैं, क्योंकि प्रथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही होती हैं। प्रथाओं का पालन करने से व्यक्ति समाज के किसी भी भाग का उपहास से बच सकता है तथा उन्हें नए सिरे से कुछ सोचना भी नहीं पड़ता। हिंदू विवाह में कुछ निश्चित प्रथाएं परंपरागत रूप से पाई जाती हैं। कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि वह कोई बोझ मोल लेना नहीं चाहता। इससे उसका जीवन भी सुचारू रूप से चलता है। संभवतः इसलिए गिंसबर्ग ने कहा है कि प्रथाएं हमारे जीवन में वही काम करती हैं जो प्राणियों में मूल प्रवृत्तियां करती हैं। प्रथाएं सामाजिक जीवन में मनुष्यों को मार्ग दिखाने का काम करती हैं। चूँकि प्रथाएं समाज में आरंभ से चली आ रही होती हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इसका श्रद्धापूर्वक पालन करता है। वेस्टरमार्क का कथन है कि कानून पालन भी इसलिए होता है कि वे स्वयं प्रथा होते हैं, ना इसलिए कि वे कानून होते हैं। प्रथाओं का पालन व्यक्ति इसलिए भी करता है कि वह यकायक उस पर लादा नहीं जाता, बल्कि बचपन से ही वह प्रथाओं का पालन करता रहता है। बचपन से ही समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्रथाओं का पालन करना व्यक्ति की आदत बन चुकी होती है, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के व्यक्ति इसे स्वीकार करता है। इस प्रकार यह पता चलता है कि प्रथाओं के द्वारा व्यक्ति का सामाजिक नियंत्रण होता है। आचार आचार भी सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। समाज में कुछ इस प्रकार के विचार विकसित हो जाते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित, इन्हीं को आचार कहा जाता है। आचार के संबंध में डेविस ने लिखा है, आचार कर्तव्य की आंतरिक भावना है जिसमें उचित और अनुचित का विचार सन्निहित होता है। डेविस के विचारों से भी पता चलता है कि आचार कुछ व्यवहारों को करने की अनुमति प्रदान करता है, क्योंकि वे उचित होते हैं और यह लोगों को अनुचित व्यवहारों से दूर रहने की सलाह देता है। बहुत से व्यवहार उचित होते हैं, जैसे बड़े बूढ़ों एवं माता का सेवा करना, सच बोलना तथा ईमानदार बनना आदि ऐसे व्यवहार हैं जिन्हें उचित समझा जाता है। और आचार्य यह भी बताता है कि कौन सा व्यवहार अनुचित है, जैसे झूठ बोलना, बड़ों का अनादर करना तथा चोरी करना आदि ऐसे व्यवहार हैं जो अनुचित है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। हालांकि आचार का पालन करवाने के लिए कोई कानूनी शक्ति नहीं होती, लेकिन व्यक्ति स्वयं उचित एवं अनुचित के आधार पर उचित व्यवहारों को ही अपनाता है और इस प्रकार उसका व्यवहार नियंत्रित होता है तथा सामाजिक नियंत्रण होता है। अतः आचार भी सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन है। विश्वास। विश्वास सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है। विश्वास अनेक रूपों में मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है। ईए रॉस ने पुस्तक सोशल कंट्रोल में विश्वास के 5 प्रकारों की चर्चा की है। विश्वास के 5 प्रकारों द्वारा सामाजिक नियंत्रण का कार्य किया जाता है। विश्वास का पहला प्रकार सामाजिक नियमों और व्यवहारों की शाश्वतता में विश्वास है। इस विश्वास के अनुसार ही यह माना जाता है कि सामाजिक नियम स्वाभाविक एवं प्राकृतिक होते हैं और उनके विरुद्ध कार्य करने से प्रकृति की ओर से दंड मिलता है। इस विश्वास के कारण लोग सामाजिक नियमों की अवहेलना नहीं करते तथा इस प्रकार व्यक्तियों का सामाजिक नियंत्रण होता है। विश्वास का दूसरा प्रकार कर्म फल में विश्वास है। इस विश्वास के कारण यह माना जाता है कि प्रत्येक आत्मा एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करती है। कर्म फल के आधार पर दूसरे जन्म में किसी व्यक्ति को अच्छा या बुरा शरीर मिलता है। कर्म फल में विश्वास करने के कारण व्यक्तियों के अंदर यह विश्वास पाया जाता है कि अच्छे कर्म करने वालों को ब्राह्मण, देवता या राजा का शरीर प्राप्त होता है, जबकि बुरा कर्म करने वाले को शूद्र या पशु योनि में शरीर मिलता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अच्छा कर्म करना चाहता है, जिससे उसके व्यवहारों का नियंत्रण होता है। विश्वास का तीसरा प्रकार तपस्या में विश्वास है। यह इस विश्वास के अनुसार यह माना जाता है कि बुरे आदमी को बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में भोगना पड़ता है, इसलिए व्यक्ति तपस्या आदि के द्वारा सत्कर्मों को प्रेरित होता है ताकि उसे बुरा फल ना भोगना पड़े। विश्वास का चौथा प्रकार परलोक में विश्वास है। प्रत्येक समाज में स्वर्ग तथा नरक की धारणा पाई जाती है, इसलिए व्यक्ति गलत या असामाजिक कार्यों को करने से बचता है और समाज सम्मत कार्यों को करता है, फलतः उनका सामाजिक नियंत्रण होता रहता है। समाज का पांचवा प्रकार गतात्मों के संबंध में विश्वास है। इस विश्वास के कारण यह धारणा पाई जाती है कि आत्माएं अमर होती हैं और पृथ्वी छोड़ने के बाद भी उनका अपने परिजनों से लगाव होता है। माँ बाप अपने बच्चों को पति पत्नी को तथा पत्नी पति को स्वर्ग से देखते रहते हैं। इस धारणा के कारण व्यक्ति गलत या बुरे कार्य करने से बचता है, इस प्रकार उसके व्यवहारों का नियंत्रण होता है। ग्रीन एवं ग्लिन ने भी विश्वासों के 5 भागों में बांटा है और लगभग ऊपर लिखित बातों से मिलता जुलता विचार प्रस्तुत किया है। इस प्रकार यह पता चलता है कि विश्वास सामाजिक नियंत्रण का एक प्रभावशाली साधन है। इसमें ना कोई खर्च लगता है और ना कोई मेहनत लगनी पड़ती है। मनुष्यों में पनपे विभिन्न विश्वासों के कारण व्यक्ति खुद ब खुद नियंत्रित होता रहता है। एक ही विश्वास कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और यह जो कि हम कर रहे हैं वह देखता है के कारण व्यक्तियों के व्यवहार बहुत हद तक अपने आप में नियंत्रित हो जाते हैं। अतः विश्वास सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन है। राज्य। राज्य सामाजिक नियंत्रण का एक बाध्यतामूलक एवं औपचारिक साधन है। इसके द्वारा जनता के मौलिक सिद्धांतों की रक्षा, बाहरी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा, शिक्षा, प्रचार प्रसार तथा सामाजिक आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। राज्यों के पास समाज को नियंत्रित करने के लिए अनेक साधन होते हैं, जिनमें न्याय एवं दंड प्रमुख है। वार्ड का कहना है कि राज्य विरोध, संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सुधार आदि कार्यों के लिए सामाजिक नियंत्रण करता है। राज्य देश के अंदर विभिन्न प्रकार से नियंत्रण रखकर समाज को नियंत्रित करता है। राज्य के पास अनेक ऐसे स्वेच्छाकारी तथा बाध्यामूलक साधन होते हैं, जिनके द्वारा सामाजिक नियंत्रण किया जा सकता है। राज्य सेना के माध्यम से बाहरी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा करता है। इस प्रकार पता चलता है कि राज्य अपने विभिन्न साधनों के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण कार्य करता है। नेतागण भी सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है। प्रत्येक समाज तथा राष्ट्र में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका अनुसरण लोग करना चाहते हैं। ऐसे लोग समाज एवं देश के नेतृत्व करते हैं। इस संबंध में ग्लिन ने कल्चरल सोशियोलॉजी में लिखा है, सामाजिक नियंत्रण में पहला पग शायद प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा ही उठाया गया है। नेतृत्व और अधीनता पशु जीवन में को देखने को मिलते हैं। महापुरुष सदा की भांति आज भी समाज में अपनी भूमिका अदा करता आ रहा है। यद्यपि आधुनिक प्रजातंत्र ने उसे सेना के निर्देशन के स्थान पर उद्योग, शिक्षा, कला तथा विज्ञान के निर्देशक का नया रूप प्रदान कर दिया है। इस विचार से पता चलता है कि नेतागण सामाजिक नियंत्रण के प्रभावशाली साधन है। दुर्खिम ने भी कहा है कि नेतागण सामुदायिक जीवन के प्रतिनिधि हैं। विभिन्न देशों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि समय समय पर किस प्रकार उस देश के महापुरुषों एवं नेतागण ने अपने विचारों के माध्यम से समाज को नियंत्रित किया है। भारत में सर्वश्री महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री एवं अन्य नेतागण ने समय समय पर युद्ध क्षेत्रों के अलावा शांति क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव छोड़ा है और सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में इनके विचारों का समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार लेनिन, हिटलर तथा मुसोलिनी आदि के विचारों ने भी अपने अपने देशों में सामाजिक नियंत्रण का काम किया है। अच्छे नेता अपने अनुयायियों के लिए आदर्श होते हैं और वे हमेशा अपने अनुयायियों के ऐसे ही विचार प्रदान करते हैं जिनसे उनका उचित मार्गदर्शन होता रहे। सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग नेता होते हैं और वे समाज के सदस्यों का सामाजिक नियंत्रण करते हैं। इस प्रकार यह पता चलता है कि नेतागण या नेतृत्व सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। कला भी सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। कला में समाज में व्यक्तियों की अनुभूति पर शासन करती है। एक कलाकार अपनी विभिन्न कलाओं द्वारा दूसरे को प्रभावित करता है। कला के संबंध में हॉर्वेल ने लिखा है, कला से तात्पर्य उन रेखाओं, आकारों, रंगों, गति, शब्द, रेखांकन, चित्रण, मूर्तिकला, नृत्य, ध्वनि, काव्य और साहित्य से है, जिनके द्वारा सार्वजनिक प्रवृत्तियों का अभिव्यक्ति की जाती है। कला साधन और संस्था के रूप में विभिन्न प्रकार से सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में अपना योगदान करता है। कलाकार अपने कला के माध्यम से मानव जीवन के सत्य का रहस्य उद्घाटन करता है। साथ ही वह अपनी कृतियों के माध्यम से समाज के आदर्शों और मूल्यों का संप्रेषण करता है और संपूर्ण समाज को एकता के सूत्र में बांधता है। जनमत को निर्देशित कर दिशा की प्राप्ति आदि कार्यों में कला का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसलिए कला को सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। प्रचार भी सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है। आज का युग प्रचार प्रसार का युग है। प्रचार का प्रभाव व्यक्ति पे तीव्र गति से होता है और इसका असर स्थायी भी होता है। प्रचार को सामाजिक नियंत्रण का बाध्यामूलक अनौपचारिक साधन भी कहा जाता है। जब किसी भी समाज में नियंत्रण को लगाने की आवश्यकता महसूस की जाती है तो उसका प्रचार अवश्य किया जाता है। प्रचार अपने विभिन्न माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र तथा प्रेस आदि के द्वारा समाज पर नियंत्रण करता है। प्रचार के द्वारा घर बैठे ही व्यक्तियों को विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। प्रचार के माध्यम से पुराने फैशन को छोड़कर नए फैशन आदि को अपनाने का अवसर मिलता है। इस प्रकार विभिन्न समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से लोगों के व्यवहारों का नियंत्रण भी होता है। मानव की आर्थिक क्रियाओं का भी प्रचार ने अत्यधिक प्रभावित किया है। इस प्रकार प्रचार विभिन्न तरीकों से मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है। हास्य व्यंग भी सामाजिक नियंत्रण का साधन है। यह नियंत्रण सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक साधन है। यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वस्तु स्थिति के विपरीत पक्ष को और उसकी चरम सीमाओं को व्यंगात्मक दृष्टिकोणों से, अतिरेक से और परिहास से व्यक्त किया जाता है। व्यंग के भय से व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे उसका परिहास हो। इस प्रकार यदि व्यंगात्मक साधन ना होता तो व्यक्ति में कुछ अनौपचारिक स्थितियां उत्पन्न हो जाती। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सामाजिक नियंत्रण का मुख्य आधार हास्य व्यंगात्मक कारण भी हो सकता है। पुरस्कार और दंड। सामाजिक नियंत्रण का एक साधन पुरस्कार और दंड है। प्रत्येक समाज में पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था की जाती है जिसके कारण व्यक्तियों का सामाजिक नियंत्रण होता है। विभिन्न समाजों में इसकी अवस्था अलग अलग होती है। व्यक्ति हमेशा ऐसा करना चाहता है जिससे उसे पुरस्कृत किया जाए। इस प्रकार वह समाज के अनुकूल आचरण करता है। साथ ही साथ दंड की व्यवस्था के कारण भी कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार नहीं करना चाहता। इस प्रकार उसके व्यवहारों का नियंत्रण होता है। पुरस्कार और दंड मनोवैज्ञानिक प्रभावों के कारण व्यक्ति कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहता। इस प्रकार यह पता चलता है कि पुरस्कार व्यक्तियों के सकारात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ाता है जबकि दंड व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों के विपरीत कार्य करने से रोकता है। ग्रीन का कथन है कि दंड का प्राथमिक उद्देश्य अपराधी को कष्ट देना अथवा उन्हें अपराध करने से रोकना नहीं बल्कि उन व्यक्तियों के मस्तिष्क में भय उत्पन्न करना है जो अपराध करने के लिए ललायित रहते हैं। सामाजिक जीवन के प्रत्येक स्तर पर पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था को देखने मिलती है। बचपन में परिवार, स्कूल तथा अन्य संस्थाएं पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से व्यक्तियों के व्यवहारों का नियंत्रण करता है। बाद में समाज और राज्य के द्वारा पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से व्यक्तियों के व्यवहारों का नियंत्रण किया जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पुरस्कार एवं दंड सामाजिक नियंत्रण के एक साधन है। अहिंसा। अहिंसा भी सामाजिक नियंत्रण का साधन है। हिंसा के विपरीत अहिंसा द्वारा सामाजिक नियंत्रण हो सकता है। इसका पाठ राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने पढ़ाया। इस संबंध में एंड्रयूज का कहना है कि अहिंसा धारण के दो स्पष्ट पक्ष होते हैं जिनमें पहला नकारात्मक होता है, दूसरा सकारात्मक। नकारात्मक दृष्टिकोण से अहिंसा का स्वार्थ अर्थ स्वार्थ द्वेष या क्रोध व चाहे वह शत्रु ही क्यों न हो या न मारना और किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाना है। सर्वोच्च प्रेम, सर्वोच्च दयालुता और उदारता, सर्वोच्च आत्मबलिदान, वीरता तथा सबलता आदि सकारात्मक दृष्टिकोण से अहिंसा के मूल तत्व हैं। सबसे प्रेम करना, बुराई पर अच्छाई से विजय, प्राणी मात्र के प्रति भेम भाव और अहिंसा के मूल मंत्र हैं। अहिंसा के संबंध में गांधी जी का कथन है, वह जो हाथ तलवार लेकर मारता है निसंदेह वीर है, परंतु वह जो अपनी छोटी उंगली ले तक को उठाए बिना मृत्यु को डर का सामना करता है वह अधिक वीर है। अहिंसा पर विश्वास करने वालों के लिए गांधी जी ने कहा, आजकल यह फैशन हो गया है कि अहिंसा के आधार पर समाज को ना तो संगठित किया जा सकता है और ना चलाया जा सकता है। उनका कहना था कि मैं इस कथन का विरोध करता हूँ। इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि किस प्रकार अहिंसा के द्वारा व्यक्ति और समाज को नियंत्रित किया जा सकता है। उनका कहना था कि जब पिता ने अपने पुत्र की किसी गलती पर थप्पड़ मारता है तो पुत्र अपने पिता से बदला लेने की बात नहीं सोचता। वह सोचता है कि उसके व्यवहार से पिता का प्यार आहत हुआ। ऐसा नहीं कि थप्पड़ खाने के डर से गलत व्यवहार नहीं करता। गांधी जी का कहना है कि जो व्यवस्था परिवार में देखने को मिलती है वही व्यवस्था समाज में भी होनी चाहिए, क्योंकि परिवार समाज का छोटा रूप है। इस प्रकार यह पता चलता है कि अहिंसा के द्वारा लोगों के विचारों को परिवर्तित एवं नियंत्रित कर सामाजिक नियंत्रण किया जा सकता है। अतः सामाजिक नियंत्रण का एक साधन कहा जा सकता है। सामाजिक नियंत्रण के उपयुक्त साधन के अवलोकन से पता चलता है कि विभिन्न साधनों के द्वारा विभिन्न रूपों से सामाजिक नियंत्रण होता है। इनमें से कुछ साधन औपचारिक हैं तथा कुछ अनौपचारिक।